स्वागत। आज हम एक बहुत ही विशेष स्रोत पे बात करने जा रहे हैं। ये है पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा के कुछ अंश
जी।
और ये पुस्तक उस क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है जो पूज्य गुरुदेव ने मुख्यतः 1988 से 1990 के बीच लिखी थी।
हाँ, वो दौर बहुत महत्वपूर्ण था।
बिल्कुल, और उन्होंने स्वयं भी कहा था वंदनीय माताजी से वसंत पंचमी 1990 को कि मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा।
जी, मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांति धर्मी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।
हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस ज्ञान शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को थोड़ा समझें।
बिल्कुल सही, और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि पूज्य गुरुदेव के इस गहरे चिंतन से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन्हें पकड़ें।
जैसे कि
प्रखर प्रज्ञा आखिर है क्या, इसे सृष्टा का परम प्रसाद क्यों कहा गया है, और उस समय की जो परिस्थितियां थीं जैसा पूज्य गुरुदेव देख रहे थे उसमें इसका क्या महत्व था, जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है।
हाँ, प्रासंगिक तो आज भी लगता है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिभा से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये मानवीय क्षमता का एक सघन रूप है।
जी, सघन रूप।
इसमें शक्ति बहुत है।
हाँ, अपार शक्ति। मतलब सही दिशा मिले तो व्यक्ति महामानव बन सकता है, और गलत दिशा
तो दैत्य भी बन सकता है।
बिल्कुल।
तो यहीं पर प्रखर प्रज्ञा की बात आती है। ये सिर्फ प्रतिभा से कुछ अलग है ना?
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, प्रतिभा को आप एक तरह से समझ सकते हैं कि वो एक शक्तिशाली इंजन जैसी है।
अच्छा,
कच्ची ताकत।
हाँ,
कच्ची ताकत, अपार क्षमता, लेकिन प्रखर प्रज्ञा, वो कुशल चालक है, वो स्टीयरिंग व्हील है जो ये पक्का करता है कि ये ताकत सही दिशा में लगे।
लोक मंगल के लिए।
जी, लोक मंगल के लिए इस्तेमाल हो, ना कि विनाश के लिए। तो ये सिर्फ दिमागी तेजी नहीं है, बल्कि इसमें विवेक है, दूरदर्शिता है।
विवेक और दूरदर्शिता।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव तो इसे चेतना के उस गहरे, उस ईश्वरीय अंश से जोड़ते हैं जो हमें क्रियाशील रखता है, जीवित रखता है। प्रज्ञा वो उस गहरे संबंध को जगाने की, उसे समझने की कुंजी है।
और पूज्य गुरुदेव ने उस समय, मतलब 88-90 के आसपास,
जी,
समाज में दुर्बुद्धि और अनास्था का काफी जोर देखा था।
बिल्कुल, बहुत ज्यादा।
उनका एक कथन मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है, युग परिवर्तन प्रतिभा ही करेगी।
हाँ,
क्या इसका मतलब यही था कि केवल प्रज्ञायुक्त प्रतिभा ही बदलाव लाएगी?
निश्चित रूप से उनका इशारा इसी प्रखर प्रज्ञा की ओर ही था। ये सिर्फ ये नहीं कि प्रतिभा का अच्छा उपयोग हो, बल्कि ये समाज में जो फैली हुई दुर्बुद्धि है, मतलब गलत सोच, नकारात्मकता, उससे लड़ने का हथियार भी है।
अच्छा,
और ये ईश्वर के बारे में जो गलतफहमियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनको भी दूर करती है।
जी,
जैसे कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर बस मनौतियां पूरी करने वाले हैं
या दंड देने वाले हैं छोटी बातों पर।
हाँ, बिल्कुल। तो प्रज्ञा इन सब भ्रांतियों से ऊपर उठाती है, और ये प्रज्ञा ये सतही पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं आती।
तो फिर कैसे आती है?
ये आती है आत्मबल से, और वो आत्मबल जगता है आत्मशोधन से और लोक मंगल के कार्यों से।
ठीक है, तो ये प्रज्ञा विकसित कैसे हो? आपने दो शब्द कहे, आत्मशोधन और लोक मंगल या उदारता। पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए क्या क्या कोई व्यवहारिक रास्ता सुझाया? क्योंकि आत्मशोधन सुनने में काफी व्यक्तिगत साधना जैसा लगता है।
जी, लगता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने इसे बहुत स्पष्ट किया है। देखिए, पहला आधार है आत्मशोधन। इसका मतलब है अपने दोषों पर, अपनी कमियों पर सख्ती।
अच्छा, मतलब अनुशासन।
हाँ, अनुशासन, संयम, खुद की लगातार समीक्षा करना। और दूसरा है उदारता।
उदारता दूसरों के प्रति।
जी, दूसरों के प्रति करुणा, सेवा, सहायता का भाव, अपना समय, अपना प्रभाव, अपना ज्ञान, पुरुषार्थ, अपना धन, उसका एक अंश परमार्थ के लिए लगाना। और ये दोनों जुड़े हुए हैं।
कैसे?
आत्मशोधन से पात्रता विकसित होती है, योग्यता बढ़ती है। जैसे जैसे एक बड़ा और साफ बर्तन ही ज्यादा पानी इकट्ठा कर सकता है ना?
हाँ, ठीक है।
वैसे ही जिसका अंतःकरण परिष्कृत है, साफ है, वही व्यक्ति दैवी अनुग्रह को, या कहें प्रज्ञा को, धारण कर पाता है, उसे संभाल पाता है।
तो इसका मतलब पूजा पाठ कर्मकांड वगैरह इनका कोई स्थान नहीं है?
नहीं, स्थान तो है, पर प्रतीक के रूप में।
हाँ,
वो हमें असली साधना की ओर इशारा करते हैं, याद दिलाते हैं।
अच्छा,
असली साधना तो जीवन साधना है, अपने गुण, कर्म, स्वभाव को लगातार बेहतर बनाना, प्रामाणिक बनना।
प्रामाणिक बनना मतलब?
मतलब जो सोचना वही कहना और वही करना, मन वचन कर्म में एकता, यही ईश्वर के पास जाने का, आत्मज्ञान पाने का सीधा रास्ता है। पूज्य गुरुदेव ने रामायण का उदाहरण भी दिया है।
हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना।
बिल्कुल, यहाँ सुमति यानी सद्बुद्धि यानी प्रज्ञा, यही तो मूल संपत्ति है, बाकी सब तो उसी से आता है।
और इसी से जुड़ा हुआ है उनका विचार क्रांति का आह्वान। उन्होंने माना कि समाज की जो ज्यादातर समस्याएं हैं उनकी जड़ कहीं न कहीं हेय चिंतन में है, गिरी हुई सोच में।
बिल्कुल, मूल कारण वही है। और इस विचार क्रांति को लाने के लिए सिर्फ उपदेश देना काफी नहीं है।
तो क्या चाहिए?
इसके लिए चाहिए प्रखर प्रतिभाएं, ऐसे पुरुष और नारी जो आदर्शों को केवल बोले नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें, जिनका अपना चिंतन, चरित्र, व्यवहार वो उत्कृष्टता का प्रमाण हो।
अच्छा, मतलब जिनका जीवन ही एक संदेश हो।
हाँ बिल्कुल, उनकी प्रामाणिकता ही दूसरों को प्रेरणा देगी। यही वो देव मानव हैं जिनके उभार से नव सृजन का एक बेहतर युग का आरंभ होगा। और पूज्य गुरुदेव का ये जो ज्ञान शरीर है, ये क्रांतिधर्मी साहित्य, ये इन्हीं प्रामाणिक व्यक्तियों के माध्यम से फैलेगा, समाज में वास्तविक बदलाव लाएगा।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रखर प्रज्ञा ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत अनमोल उपहार है।
जी, परम प्रसाद।
हाँ, परम प्रसाद, लेकिन ये यूं ही नहीं मिलता। इसे आत्म परिष्कार, उदारता और प्रामाणिकता के रास्ते पर चलकर अर्जित करना होता है।
सही कहा, कमाना पड़ता है।
और ये न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन को सार्थक बनाता है बल्कि समाज के नवनिर्माण के लिए भी जरूरी है, अनिवार्य है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट किया।
हाँ, उनका आवाहन तो बहुत स्पष्ट था, ज्ञान फैलाओ, सद्बुद्धि जगाओ। और आज के समय में ये सोचने वाली बात है कि हम सब अपनी प्रज्ञा को, चाहे वो अभी कितनी छोटी क्यों न लगे, उसे लगातार निखारने का प्रयास करें।
हाँ, और उस प्रयास से इस व्यापक विचार क्रांति में अपना योगदान दें।
बिल्कुल, शायद हर व्यक्ति का वो छोटा सा प्रामाणिक प्रयास, वही मिलकर बड़ा परिवर्तन लाता है। और जिन्हें इस विषय में और गहराई से जानना हो, उनके लिए सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा पुस्तक का अध्ययन निश्चित ही बहुत सहायक होगा।
जी जरूर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
धन्यवाद।